مقدس مرقس کے مطابق انجیل چھٹا باب۔ یسوع اپنے وطن میں۔
پھر وہاں سے روانہ ہو کر وہ اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانے میں تعلیم دینے لگا، اور سننے والوں میں سے اکثر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اسے یہ سب کچھ کہاں سے ملا، اور یہ کیسی حکمت ہے جو اسے بخشی گئی، اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا یہ وہ بڑھئی نہیں، ابن مریم اور یعقوب اور یوسف اور یہودا اور شمون کا بھائی؟ اور کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ اور انہیں اس کے سبب سے ٹھوکر لگی۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، نبی کہیں بے عزت نہیں ہوتا مگر اپنے وطن اور اپنے رشتے داروں اور اپنے گھر میں، اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا سوا اس کے کہ تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں شفا بخشی۔ اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا، اور وہ ارد گرد کے گاؤں میں تعلیم دیتا پھرا۔
ہدایات رسالت۔ اور اس نے 12 کو پاس بلایا اور انہیں دو دو کر کے بھیجنا شروع کیا، اور انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا، اور انہیں حکم دیا کہ راستے کے لیے سوا لاٹھی کے کچھ نہ لو، نہ روٹی، نہ تھیلی، نہ اپنے کمر بند میں پیسہ، مگر چپلیاں پہنو اور دو کرتے نہ پہنو۔ اور ان سے کہا، جہاں تم کسی گھر میں داخل ہو تو وہیں رہو جب تک کہ تم وہاں سے روانہ نہ ہو، اور جس جگہ لوگ تمہیں قبول نہ کریں اور تمہاری نہ سنیں وہاں سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دو، تاکہ ان پر گواہی ہو۔ اور وہ روانہ ہو کر منادی کرنے لگے کہ توبہ کرو، اور وہ بہت سی بدروحوں کو نکالنے اور بہت سے بیماروں کو تیل مل کر شفا دینے لگے۔
قتل یوحنا۔ اور ہیرودیس بادشاہ نے اس کا ذکر سنا، کیونکہ اس کا نام مشہور ہو گیا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ یوحنا استباغی مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے اس سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ مگر بعض کہتے تھے کہ الیاس ہے، اور بعض کہتے تھے کہ نبیوں میں سے کسی کی مانند ایک نبی ہے۔ لیکن ہیرودیس نے سن کر کہا کہ یوحنا، جس کا سر میں نے کٹوایا، وہی جی اٹھا ہے، کیونکہ ہیرودیس نے آپ ہیرودیاس کے سبب سے، جو اس کے بھائی فیلبوس کی بیوی تھی، یوحنا کو پکڑوایا اور اسے قید خانے میں بند کیا، کیونکہ اس نے اس سے بیاہ کیا تھا۔ اور یوحنا نے ہیرودیس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی رکھنا تجھے روا نہیں۔ इसलिए हेरोदियास उस पर दाव लगाए हुए थी और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर करा ना सकी, इसलिए कि हेरोदीस यूहन्ना को रास्तबाज और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत तश्वीशनाक हो जाता, मगर सुनता खुशी से था। और मुआफिक दिन जब हेरोदीस ने अपनी सालगिरह में अपने उम्रा और फौजी सरदारों और जलील के रईसों की जियाफत की, तब हेरोदियास ही की बेटी अंदर आई और रक्स करके हेरोदीस और उसके हम नवालों को खुश किया। तब बादशाह ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा, और उससे कसम खाई कि जो कुछ तू मुझसे मांगे अपनी आधी सल्तनत तक मैं तुझे दूंगा। वो बाहर गई और अपनी मां से कहा कि मैं क्या मांगूं। वो बोली, यूहन्ना इस्तिबागी का सर। तब वो फौरन बादशाह के पास जल्दी से अंदर आई और अर्ज करके कहा, मैं चाहती हूं कि तू यूहन्ना इस्तबागी का सर थाल में अभी मुझे दे दे। बादशाह बहुत गमगीन हुआ, मगर अपनी कसमों और हम नवालों के सबब से ना चाहा कि उसे दिलगीर करे। पस बादशाह ने फौरन हुक्म देकर सिपाही को भेजा कि उसका सर लाए। उसने जाकर उसका सर कैदखाने में काटा और उसका सर थाल में लाया और उस लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी मां को दिया। और उसके शागिर्द ये सुनकर आए और उसकी लाश उठाकर कब्र में रखी।
रोटियों का मौजज़ा। और रसूल यसु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उससे बयान किया। तब उसने उनसे कहा, तुम अलग वीरान जगह में चले जाओ और जरा आराम करो, इसलिए कि बहुत आमदोरफ्त थी और उन्हें खाना खाने की भी फुर्सत न मिलती थी। बस वो कश्ती पर चढ़कर अलग एक वीरान जगह में चले गए और बहुतेरों ने उन्हें जाते देखा और जान गए, और सब शहरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। और यसु ने उतरकर बड़ा हजूम देखा और उसे उन पर रहम आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानन थे जिनका चरवाहा ना हो, और वो उन्हें बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। जब काफी देर हुई तो उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि ये जगह वीरान है और बहुत देर हो चुकी, उन्हें रुखसत कर ताकि आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने वास्ते कुछ खाने को मोल लें। उसने जवाब में उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। तब वो बोले, क्या हम जाकर 200 दीनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? पर उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, जाओ देखो। उन्होंने दरियाफ्त करके कहा, 5 और 2 मछलियां। तब उसने उन्हें हुक्म दिया कि सबको हरी घास पर क्यारी क्यारी में बिठाओ। वो 100-100 और 50-50 के दस्तों में बैठ गए। तब उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत चाही और रोटियां तोड़ी और अपने शागिर्दों को दी कि उनके आगे रखें, और उसने वो 2 मछलियां भी उन सब में बांटी और सब खाकर सैर हो गए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां उठाई और कुछ मछलियों से भी, और जिन्होंने वो रोटियां खाई वो 5,000 मर्द थे।
यस्सू का पानी पर चलना। और फौरन उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती की तरफ जाएं, और उससे पहले बैतसैदा को पार चलें जब तक कि वो हजूम को रुखसत करे, और उन्हें रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने गया, और जब शाम हुई तो कश्ती झील के बीच में थी और वो अकेला खुश्की पर था, और उसने देखा कि वो खैने से बहुत तंग हैं क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी। तब रात के चौथे पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और चाहा कि उनसे आगे निकल जाए। जब उन्होंने उसे झील पर चलता देखा तो ख्याल किया कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब ने उसे देखा और घबरा गए। मगर उसने फौरन उनसे बातें की और उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, मत डरो। वो कश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई। तब वो अपने दिल में और भी हैरान हुए, इसलिए कि वो रोटियों की बाबत ना समझे थे, बल्कि उनके दिल सख्त रहे। और वो पार होकर जिन्नासरत के इलाके में पहुंचे तो लंगर डाला। जब वो कश्ती पर से उतरे तो फौरन लोगों ने उसे पहचाना और उस सारे इलाके की हर तरफ दौड़े, और बीमारों को चारपाइयों पर रखकर जहां उन्होंने सुना के वो है ले जाने लगे, और वो जहां कहीं गांव या शहरों या बस्तियों में जाता था वहां लोग बीमारों को चौकों में रखते और उसकी मिन्नत करते थे कि वो सिर्फ उसकी पोशाक के दामन ही को छू लें, और जितने उसे छूते थे शिफा पाते थे।